तो जो इंद्री विजय या कि कामनाओं पर विजय है, जिसको तपस्या कहते हैं, उस तपस्या के द्वारा ही कर्म निर्जरा होती है। इसलिए इंद्री और मन का सतर्क होकर के सदुपयोग करने से मुझे लाभ मिलेगा, ये मेरे भीतर एक धारणा बननी चाहिए। मैं इंद्री और मन का ठीक ठीक उपयोग नहीं करूंगा तो मेरे कर्मों का संचय ज्यादा होगा और डीके कम होगा। अगर मैं इंद्री और मन का नियंत्रित उपयोग करता हूँ तो संचय भी कम होगा और कर्मों की निर्जरा अधिक होगी, यानी संवर और निर्जरा दोनों होती हैं तप के द्वारा। ये बात हमें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इंद्री और मन ये हमारे साधन है निर्जरा के लिए। अक्सर व्यक्ति इंद्री और मन के साथ ज्ञाप्ति करता है, तो यहाँ ये कह रहे हैं या तो उन्हें निस्तेज बना देता है। आंख फोड़ लेने से थोड़ी निर्जरा होती है, आंख का ठीक ठीक उपयोग करना। इन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि क्षमता बुरी नहीं होती, क्षमता का सदुपयोग नहीं कर पाना ही उसका बुरा होना कहलाएगा। जैसे मरियल घोड़ा है वो किसी काम का नहीं होता, लेकिन जरा बलवान घोड़ा हो तो उसी से हम काम ले सकते। कैसे? इसी तरह इंद्रियां हैं, मरियल हो जाएंगी तो उनसे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। इंद्रियां सतेज रहे, मन भी हमारा बहुत सतेज रहे, लेकिन उसका सदुपयोग करें। वो जो क्षमता हमें प्राप्त हुई है, तो इंद्रिय और मन की क्षमता का सदुपयोग करना ये निर्जरा के लिए आवश्यक है। सामान्यतः हम लोग यही विचार करते हैं कि इंद्रिय और मन को मार देना, मार देने का मतलब क्या, उन्हें नष्ट कर देना? नहीं, उनकी अनियंत्रित प्रवृत्ति को नष्ट कर देना, उन्हें एक नियंत्रण देना, उन्हें एक अनुशासन देना। इस तरह ये मुख तो तप ही निर्जरा के लिए कारण है, और तप तो समता भी तप है, इंद्रिय विजय भी तप है, या कि मन का नियंत्रण भी तप है, इच्छा का निरोध जिसको मन कहते हैं वही तप है, इच्छा निरोधा तपा। इस तरह तप के माध्यम से हम निर्जरा आसानी से कर सकते हैं। और निर्जरा दो प्रकार की होती है, एक सामान्य रूप से निरंतर होने वाली और एक तप के द्वारा होने वाली। ये विचार मुझे करना चाहिए कि निरंतर होने वाली निर्जरा से मेरा काम नहीं बनेगा, तप के द्वारा होने वाली निर्जरा से मैं क्या प्राप्त करूंगा? तो संवर और निर्जरा दोनों ही मुझे मोक्ष प्राप्ति के साधन। सोई से सुख दर्शावे, अर्थात निरंतर संवर पूर्वक निर्जरा करने से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। संवर पूर्वक निर्जरा तपस्या से ही होती है। सामान्य रूप से जो निर्जरा होती है उसके साथ तो बंद भी हो रहा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसके अतिरिक्त निर्जरा भी हो रही है और संवर पूर्वक निर्जरा हो रही है। यहाँ पर जो निर्जरा भावना है वो संवर पूर्वक निर्जरा की भावना है, ये अपने को ध्यान में रखना। इस तरह ये निर्जरा भावना हुई। लोक भावना में कहते हैं कि किन्हू न करो न धरे को, षट द्रव्य मई न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। हमें लोक के बारे में भी विचार करना चाहिए। लोक को सामान्य भाषा में संसार भी कहते हैं। वह जो संसार है वो तो पंच परावर्तन रूप है, या कि छह द्रव्यों से बना हुआ है, लेकिन अपने परिणामों के द्वारा जो एक संसार में अपने भीतर बना लेता हूं वो इस संसार से बिल्कुल अलग है। मुझे उस संसार को तोड़ने का ध्यान रखना चाहिए। उस संसार का जो कि मैं अपने भीतर बनाता हूं, मैं कर्ता और स्वामी और भोक्ता हूं, ये ठीक है, लेकिन ये जो बाहर में छह द्रव्यों से बना हुआ संसार है या पंच परावर्तन रूप संसार है, उसे ना मैं कर्ता हूं, ना मैं उसका स्वामी हूं, ना मैं उसे मिटा सकता। किन्हू ना करे ना धरे को, ना कोई उसे करता है, ना कोई उसकी रक्षा करता अर्थात उसे धारण करता है, और ना कोई हरे को अर्थात ना कोई उसे नष्ट कर सकता है। ये तो छह द्रव्यों से बिना के बना हुआ है, उत्पाद वे द्रव्य, ये इसका स्वभाव है। इस तरह मैं लोक के बारे में विचार करता हूँ तो मेरे भीतर समता आती है। और अगर मैं लोक के बारे में ये विचार करता हूँ कि मैं ये बना लेता हूँ, मैं ये मिटा सकता हूँ, मैं ही मेरे द्वारा ही ये संसार चल रहा है, ऐसा विचार जीव करता है, इसीलिए वो यहाँ पर विषमता को प्राप्त करता, समता को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे कि सामान्य रूप से हम ये सोचें कि अरे हमारे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी, अरे हमारे बिना ये काम नहीं चलेगा, तो उस समय हमें विचार करना चाहिए कि मेरे नहीं होने पर भी ये संसार ऐसा ही चलता था, मैं इधर से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाऊंगा तब भी ये ऐसा ही चलेगा। ये विचार जो है लोकानुप्रेक्षा में आवश्यक है। कि मैं ये जो अपना कर्ता और स्वामी बना और भोक्ता बना मान करके यहाँ संसार में जीता हूँ, वो मेरी मान्यता ठीक नहीं है। संसार की वास्तविकता ये है कि संसार अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है, छह द्रव्यों के द्वारा, मेरे चलाए नहीं चल रहा, ना मेरे रोकने से रुकने वाला, ना मैं उसे मैनेज कर रहा। इस तरह ये लोक भावना, और भी है लोक के संस्थान का विचार करना कि 14 राज उतंगनप लोक पुरुष संस्थान तामे जीवनादिते भ्रमत है विज्ञान। मैं इस संसार में क्यों भ्रमण कर रहा हूँ, मैं अपनी अज्ञानता से भ्रमण कर रहा हूँ। सभी जीव यहाँ अपनी अज्ञानता से भ्रमण करते हैं, और ये 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू मोटा है, और ऊर्धलोक मध्यलोक और अधोलोक ऐसे 3 विभागों में बटा हुआ है। और अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं, मध्यलोक में त्रियंच और मनुष्य रहते हैं, ऊर्धलोक में स्वर्ग है और वहाँ देवलोक रहते हैं। इस तरह से ऐसा भी लोक का विचार करना वो भी किया जा सकता, वो सब भी जो है लोकानुप्रेक्षा कहलाएगी। पर मुख्य विचार ये है उसमें कि इस लोक में अपनी अज्ञानता की वजह से जीव भ्रमण करता है। संसार अनुप्रेक्षा और लोकानुप्रेक्षा में फर्क कितना, ये हमें ध्यान देना चाहिए। संसार अनुप्रेक्षा में अपन ने क्या विचार किया था कि चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच सहे हैं। सो लोक चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा या में सुखना ही लगा रहा। मैं वहां पर एक अपना संसार निर्मित करता हूं और उसमें सुख पाने की कोशिश करता हूं, जबकि यहां पर चारों गतियां जिनको की आवागमन का नाम वहां संसार है। इसलिए हमने यहाँ पर कहा कि ये लोक और संसार में इतना ही फर्क है कि लोक तो 6 द्रव्यों से मिलके बना, और वो जो संसार है वो मेरे अपने परिणामों से निर्मित हुआ है। तो मुझे जो है संसार अनुप्रेक्षा भाते समय ये कि मैं अपने परिणामों से जो एक संसार बना लेता हूँ, वो संसार मुझे सिवाय दुख के और कुछ नहीं देता, उसमें कोई सारभूत चीज नहीं है। और ये जो लोक है, इस लोक में तो अगर मैं अपनी अज्ञानता छोड़ दूं तो ये लोक मुझे समता पूर्वक अगर मैं इसमें रहूं, कर्ता भोक्ता ना बनूं, तो ये लोक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है। मेरा संसार मुझे नष्ट करना चाहिए, ये लोक को मैं ना नष्ट कर सकता हूं ना मैं बना सकता हूं। इस तरह का लोक अनुप्रेक्षा और संसार अनुप्रेक्षा में थोड़ा सा अपने को फर्क करना चाहिए। और एक चीज और है जो इसमें विशेष अपने को जानने की है कि पुरुषाकार है ये लोक, तो पूरे पुरुषाकार लोक के प्रति अगर हम एक आत्मीय भाव रखें, पूरा लोक हमारे अंदर है, इस तरह क्यों ना विचार करें, क्योंकि मेरे ही आकार का 3 लोक है। जब सारा संसार मेरे ही भीतर है, सारा लोक मेरे भीतर है, तो मैं उस पूरे लोक के साथ आत्मीयता रखूं, तब ये लोक भावना कहलाएगी। उस प्राणी मात्र के प्रति जो मैत्री का भाव है वो लोक भाव। एक अप्रोच ये भी, लोक भावना का मतलब है कि सब जीव इसी में समाये, मेरे भीतर ही हैं, इसलिए सब मेरे लिए आत्मीय हैं। समस्त जीवों में ईशत्व का या ईश्वरत्व का दर्शन कर पाना, यह भी लोक भावना। इतनी उदार वृत्ति इस लोक भावना में। लोक भावना एक तरह से अर्जुन के द्वार को दिखाया गया कृष्ण का विराट दर्शन ही है। वो विराट दर्शन एक एक, एक व्यक्ति के भीतर पूरी सृष्टि। तो फिर कितनी सावधानी रखना पड़ेगी, मेरे भीतर ही सारी सृष्टि है, तो मुझे सबको अपने भीतर समा करके चलना है। मेरी अपनी उदारता, मेरी अपनी आत्मीयता, और सबके भीतर जो ईश्वर बनने का गुण है वो लोक भावना। ये एक अलग प्रकार का सोच है लोक भावना के लिए। तो कितनी बातें हो गई कि लोक में कोई कर्ता भोक्ता और उसका स्वामी नहीं है, ये क्षद्रव्यों से मिलकर बना है। एक विचार ये करूं, यहाँ पर कोई भी जीव अगर भटकता है तो अपने समता परिणाम न रखने की वजह से भटकता है। दूसरी, जब मैं लोक का विचार करूं तो लोक ऊर्ध मध्य अधो लोक संस्थान आकार प्रकार के अपेक्षा लोक का विचार कर सकते हैं। और तीसरा विचार ये है कि लोक भावना का अर्थ है कि मैं पुरुषाकार हूँ और मेरे भीतर ही सारा लोक है, सारी समष्टि है, मुझे उसके साथ आत्मीयता रखनी है, और सभी जीवों के भीतर जो ईश्वरत्व है इतना उदार होकर के उससे मुझे स्वीकार करना। इस तरह हम 3 प्रकार से लोक भावना का विचार कर सकते हैं। ये अच्छा विचार है। फिर उसके बाद बोधि दुर्ग, अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीर्यापद पर सम्यक ज्ञान लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधो। जीवन में बहुत सारी दुर्लभता है, व्यक्ति एक एक चीज हासिल करता चला जाता है और एक एक चीज सुलभ होती चली जाती है। आचार्य महाराज कहते हैं कि निगोध से निकल करके एक इंद्रिय इत्यादि होना जीव को बहुत दुर्लभ है। जब वो एक इंद्रिय हो जाता है तो फिर दो इंद्रिय होना दुर्लभ होता है, फिर तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय और पंचेंद्रीय, और पंचेंद्रीय में संगी पंचेंद्रीय होना दुर्लभ होता है, संगी पंचेंद्रीय में भी मनुष्य होना उससे और दुर्लभ होता है। अन्य पर्याय तो प्राप्त हो जाती, मनुष्य पर्याय संगी पंचेंद्रीय के साथ प्राप्त होना, और फिर उस मनुष्य पर्याय में भी कर्म भूमि का मनुष्य होना और उसमें भी आर्य खंड में उत्पन्न होने वाला मनुष्य और ज्यादा दुर्लभ है। ये सारी क्रम क्रम से प्राप्त होने वाली दुर्लभताएं हैं। उस मनुष्य में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ, और सम्यक दर्शन के साथ देश व्रत प्राप्त करना और अधिक दुर्लभ है। श्रावक का व्रत प्राप्त करना या कि सच्चे देवगुरु शास्त्र की सानिध्य प्राप्त कर लेना ये भी बहुत दुर्लभ है। फिर उसके बाद महाव्रतों को प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ है, और महाव्रतों को प्राप्त करके भी शुद्ध भावनाओं को प्राप्त कर लेना और ज्यादा दुर्लभ है, और उन शुद्ध भावनाओं के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेना वास्तव में दुर्लभ है। क्योंकि हमने मुनि बन करके भी और बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने परिणामों को निर्मल न बनाने की वजह से बहुत ऊंचाई पर जाकर के भी नीचे आना पड़ा है। हम उस अल्टीमेट जो चीज थी, दुर्लभता थी, उसको नहीं प्राप्त कर पाए हैं, वो है बोधि। इसीलिए तमाम दुर्लभताओं के बावजूद भी बोधि दुर्लभ है। बोधि का अर्थ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी होता, और बोधि का अर्थ यहाँ पर केवल ज्ञान है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बोधि प्राप्त हो जाने पर केवल ज्ञान और ज्यादा दुर्लभ है, पर अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी प्राप्त हो जाता है तो वो भी जो है दुर्लभता हमने हासिल की है। तो यहाँ दोनों अपन ले लेंगे, पर मुख्य रूप से यहाँ केवल ज्ञान है, क्योंकि वो एक बार प्राप्त हो जाने के बाद फिर और कोई चीज नहीं पाने योग रहती। बाकी सब चीजें तो पाने के लिए क्रम क्रम से प्राप्त होने वाली चीजें हैं। इस तरह यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं कि हमने अनंत बार गैवीयक तक अर्थात स्वर्गों में और उससे भी ऊपर जाकर के स्थान पाया है, लेकिन हमें समीचीन ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान या कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए यही मुनि बनने के बाद दुर्लभता अगर कोई है तो यही है कि शुद्ध भाव करके और केवल ज्ञान को मैं प्राप्त करूं, ये मेरे लिए प्राप्तव्य है। और सबसे बड़ी चीज इसमें ये भी है कि मैं जो जो चीजें प्राप्त करता जा रहा हूं उन चीजों की दुर्लभता का मुझे हमेशा एहसास बना रहे। असल में जब हम उस चीज को पा लेते हैं तब फिर हमें उस चीज को कितनी मुश्किल से पाया है ये बात भूल जाती है। तो यहाँ पर ये भी इशारा कर रहे हैं बोधि दुर्लभ भावना के समय कि ठीक है, वो केवल ज्ञान तो दुर्लभ है ही, वो तो मुझे जब मिलेगा, पर मैंने जो अभी पाया है, मनुष्य जीवन भी मैंने पा लिया है और सच्चे देवगुरु का भी सानिध्य पा लिया है, ये भी एक दुर्लभता थी, मैं उस दुर्लभता को भूलता क्यों? मैंने किस तरह इसे हासिल किया है अगर ये ध्यान रखूं तो मैं इसे गंवा नहीं सकता फिर इजीली। इसलिए बोधि दुर्लभ में जब एक बार किसी ने कहा कि क्रम क्रम से सारी चीजें आप प्राप्त करवाते चले जा रहे हैं और पुरानी वाली को आप छोड़ते चले जा रहे हैं तो फिर दुर्लभ क्या है, फिर आप दो इंद्रिय होना दुर्लभ क्यों कहते हैं? तो हम कहते हैं कि ये कंपेरिटिव है क्रम क्रम से, और हमें दो इंद्रिय बनने के बाद इस बात का एहसास बना रहना चाहिए कि एक इंद्रिय से दो इंद्रिय होना फिर भी मुश्किल था, मैं बहुत मुश्किल से दो इंद्रिय हुआ हूँ, और अगर मैं उसको दुर्लभता नहीं मानू दो इंद्रिय बने को तो मैं वेस्ट कर दूंगा उसको कि कोई दुर्लभ नहीं, सबको मिल सकती है ना। तो ये भी वहां पर इंडिकेशन बताने के लिए कि जहां हम हैं उसको भी हम दुर्लभ माने ताकि हम उस दुर्लभता का उपयोग कर
ऐसा ना करें कि अपनी दुर्लभ से वापस उसमें चले
ये ऐसा नीचे ना चले जाए, इसके लिए मैं उसको दुर्लभ मान के उसको सेव कर सकूं, कम से कम उतना जो आगे का नहीं पा पा रहा हूं तो कम से कम जो मैंने हासिल किया है उसको मेंटेन तो कर सकूं, ये बोधि दुर्लभ।
महाराज जी आपने कहा कि ये मनुष्य आर्य खंड में पैदा होना भी दुर्लभ है, तो विदेह क्षेत्र में और ज्यादा दुर्लभ है, विदेह में
वो आर्यखंडी कहलाएगा।
अच्छा, वो भी आर्यखंड
कहलाएगा। अच्छा, वो आर्यखंड भारत क्षेत्र में एक आर्यखंड है, विदेश क्षेत्र में 32 आर्यखंड है। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा कि आर्यखंड मैंने भारत क्षेत्र नहीं कहा,
बता तो विदेश में भी ऐसा होना चाहिए कि विदेश में और भी ज्यादा दुर्लभ है भारत क्षेत्र की अपेक्षा।
ये तो है अपेक्षा, ये तो है। जहाँ कल्याण के अवसर ज्यादा है वहाँ उत्पन्न होना तो दुर्लभता ही कहलाएगी। ठीक है। यहाँ पर दो बातें विचार करने की हैं कि आत्मज्ञान तो दुर्लभ है ही, लेकिन उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने का जो अवसर है वो भी दुर्लभ है, और वो अवसर मनुष्य पर्याय में ही मिलता है, इसलिए वो मनुष्य पर्याय की दुर्लभता भी मुझे उसका भी एहसास होना चाहिए। और अंत में कहते हैं धर्म भावना, जो भाव मोह ते न्यारे दृग ज्ञान व्रताधिक सारे, सो धर्म जबे जी धारे तब ही सुख अचल निहारे। जो भाव मोह ते न्यारे, जो भी भाव हैं जो मोह से भिन्न है, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप हैं, वही सब जो है वो धर्म है। धर्म की विभिन्न परिभाषाएं बनाई, जिसमें वस्तु के स्वभाव को भी धर्म कहा, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव इत्यादि भावों को भी धर्म कहा, और रत्नत्रय को भी धर्म कहा, और जीवों की रक्षा करने का नाम भी धर्म कहा। यहां पर ये कह रहे हैं कि जो मोह भाव से रहित सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की अवस्था है, वास्तव में वो धर्म है।
मतलब केवल ज्ञान जब प्राप्त होने के निकट हो तब वही हो सकता है,
वो उसकी पूर्णता है।
हाँ,
लेकिन प्रारंभ क्या है? प्रारंभ तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, यही प्रारंभ है, क्योंकि इसमें भी मोह का अभाव तो हुआ है।
हाँ, पर वो बना तो रहता है।
वो बना रहता है, पर धर्म के जितने भी साधन हैं उनको भी मुझे धर्म मान करके चलना पड़ेगा
धीरे धीरे उसको।
इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिख रहे हैं कि जो भाव मोह होते न्यारे, वास्तव में मोह से रहित जो भाव है वे ही धर्म है, और उस मोह से रहित भावों को प्राप्त करने के लिए दृग ज्ञान व्रतादिक सारे, और जितने भी उस मोह भाव को समाप्त करने में कारण हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वे भी धर्म हैं।
मतलब इंटेंसिटी कम होती जाए उसकी धीरे धीरे। हाँ, कहने का तात्पर्य यह है,
सो इस प्रकार का जब व्यक्ति धर्म अपने जीवन में धारण करता है, यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में को प्राप्त करा दे वही धर्म है। तो कह रहे हैं कि धर्म वास्तव में वही है जो कि हमें मोक्ष सुख को दिला दे। हमें धर्म के बारे में यही भावना रखनी चाहिए, जो और सुख भी किस तरह का है, जो आत्मोत्थ सुख है, आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख है। हम जो है संसार में बाह्य पदार्थों के द्वारा उत्पन्न होने वाले सुख को सुख मान लेते हैं, वास्तव में वो सुख नहीं है। मुझे इस धर्म भावना को करते समय सुख का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि इन समस्त बाह्य पदार्थों से होने वाले सुख को दिलाने वाला धर्म नहीं है, धर्म तो मुझे अपने आत्मा से उत्पन्न होने वाले सुख को दिलाने वाला। इसलिए जब जब भी मैं धर्म की भावना भावूं तो अपने उस आत्मोत्त सुख की प्राप्ति के लिए भावना भावूं, ऐसा ना हो कि मैं धर्म के माध्यम से अपने सांसारिक सुखों के लिए लालायित रहूं या उनको पाने के लिए चेष्टा करूं, तब फिर मेरी वो धर्म भावना नहीं कहलाएगी। क्योंकि कई लोग हैं जो कि धर्म के माध्यम से अपने सांसारिक स्वर्ग के सुख इत्यादि की भी आकांक्षा कर लेते हैं, तो कहते हैं कि ऐसा धर्म जो कि हम अपने सांसारिक सुख के लिए अंगीकार करते हैं, वहां वो धर्म हमारे लिए यहाँ पर उपादेय नहीं है। धर्म भावना के समय तो हम उसी धर्म को चाहेंगे जो धर्म हमारे आत्मा से उत्पन्न होने वाले सत्य सुख को हमें प्राप्त करा देता है। और एक चीज और है इसमें धर्म भावना में, वो और मैं आपसे बात करूं पहले, फिर आपका क्वेश्चन सुनता हूं। ये आता है दौलत राम जी ने जो बारह भावना लिखी है उसमें वो एक लाइन मुझे एकदम याद नहीं आ रही है, चिंतत चिंता रहन विन जाते विन चिंत, ये धर्म सकल सुख है। धर्म वास्तव में वो है जिस जो कि मेरा अपना स्वभाव है, मुझे कहीं बाहर से किसी से याचना करके अपने लिए प्राप्त नहीं करना। संसार में और सारी चीजें याचना के द्वारा प्राप्त की जाती हैं, जैसे कि कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के याचना करना पड़ती है, है? और या कि चिंतामणि रत्न हमारे पास मिल जाए तो उस चिंतामणि रत्न के पास भी जाके विचार तो करना पड़ता कि मुझे ये चाहिए है। तो बिना किसी याचना के बिना किसी चिंता के जो मुझे सुख प्राप्त करावे वो वास्तव में धर्म है। धर्म कल्प वृक्ष नहीं है, कल्प वृक्ष से ही बड़ा है, धर्म चिंतामणि रत्न से भी अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ पर मुझे, क्योंकि कल्प वृक्ष और चिंतामणि मुझे संसार में मिल जाती है तो मैं सोचता हूँ कि धर्म मेरा फलित हो गया। कहते धर्म का फल ये नहीं है, धर्म तो ऐसा है कि जिसमें ना याचना करना पड़ती ना चिंता करना पड़ती, फिर भी सारी चीजें हमें प्राप्त होती। इसलिए
मैं इसका अभी तक अर्थ ये लगाता था, मैं रोज उसको पढ़ता हूँ, पर मेरा अपना जो सोचता वो ये था महाराज जी की जो बाकी चीजें हैं सुख की, जो भौतिक सुख की चीजें हैं, वो उसके लिए तो हमें प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़ता है, लेकिन धर्म से हमें अपने आप ही सुख की प्राप्ति होती है।
धर्म से हमें अपने आप जो सुख की प्राप्ति होती है वो कौन सा सुख है? वो आत्म सुख है, वो संतोष के द्वारा प्राप्त होता है। और जब तक मैं उस धर्म के द्वारा बाह्य चीजें पाने की चेष्टा करता रहूंगा, प्रयत्न करता रहूंगा, तब तक मुझे सुख नहीं मिलेगा, वो धर्म भी मुझे सुख नहीं देने वाला। मैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के सांध में पढ़ा रहा हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना भी करूं, और उसके बावजूद भी उन सबसे संसार के सुख चाहूं तो मुझे सिवाय दुख के क्या मिलने वाला? ये अप्रोच है वहाँ कि मुझे ना याचना करनी है और ना मुझे किसी बात की चिंता करनी है कि मुझे मिलेगा कि नहीं, मुझे तो संतोष धारण करना है, क्योंकि धर्म तो संतोष में ही है, धर्म मुझे संतोष सिखाता है और तृप्ति देता है, ये मुझे धर्म भावना के समय। क्यों अच्छा, जो जीवन को गति दे वो धर्म, ये उसको अपन पहले कंप्लीट हो गया आपका?
नहीं चल रहा है,
उसको कर दीजिएगा बंद।
महाराज मेरा एक छोटा सा प्रश्न था जो मैं कई बार आपसे सुना, राग द्वेष और मोह, राग द्वेष और मोह ये तीन चीज है। पहले मैं सोचता था कि राग और द्वेष जो है वही सबसे दुख का कारण है, अब वो समय साथ में जब मैं अध्ययन कर रहा था तो उसमें ये भी आया कि मोह जो है वही सबसे ज्यादा दुख का कारण है और राग द्वेष भी मोह के कारण ही होता है। तो इनमें थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा
खास फर्क नहीं है, मोह की दो वैरायटी, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह को सामान्य रूप से मोह कहते हैं, चारित्र मोह को राग और द्वेष कहते हैं, इतना ही फर्क। इसलिए जहाँ ये लिखा हो कि राग द्वेष और मोह को छोड़ो, तो वहाँ मोह से तात्पर्य है दर्शन मोह से, जो हमारी श्रद्धा को विकृत करने वाला है, और हमारे आचरण को विकृत करने वाला चारित्र मोह है। तो राग द्वेष से मतलब चारित्र मोह से, और सामान्य मोह से मतलब दर्शन मोह से, तो तीनों को छोड़ो। और जहाँ ये कहा हो कि मोह छोड़ो, तो वहाँ पर दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों छोड़ने की,
राग द्वेष ऑलरेडी आ
गया, राग द्वेष भी। चुल्लक जी आ गए क्या? ठीक, ग्वाले आओ। तो ये आखिरी जो श्लोक था ना, सो धर्म मुनिन करि धरिए, तिनकी करतूत उचरिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुकूत बिछानी। ये जो मैंने धर्म की बात कही है बारह भावनाओं के माध्यम से, उसमें वास्तव में देखा जाए तो धर्म तो महाव्रत रूप या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय रूप मुनियों के द्वारा ही करने योग्य है। सो अब जब मुझे धर्म का स्वरूप ही समझना है तो फिर मुनियों की प्रवृत्ति में समझ लूं। तिनकी करतू तो चरिए, अर्थात उनके द्वारा किए जाने वाली जो क्रिया है उसको भी मुझे जानना चाहिए। सो उसी के लिए मैं आगे कहता हूँ अपनी अनुभूति पिछानी, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा लोग ये ले लेते हैं कि जैसे दौलत राम जी कह रहे हैं कि मैंने जो मुनि धर्म का अनुभव किया है उसको बता रहा हूँ। नहीं, अपनी अनुभूति पिछानी अर्थात अपने आत्मा का अनुभव करिए। वास्तव में अपने आत्मा का अनुभव करना ही धर्म है, मुनि जनों के द्वारा वह आत्मा का अनुभव किया जाता है, इसलिए उनके माध्यम से तुम भी अपने आत्मा का अनुभव करो। मैं आगे वाली ढाल में यही बात कहने वाला हूँ।
हाँ,
इसलिए षटकाय जीवन हनन ते सब विधि दरब हिंसा डरी, रागादि भाव निवार ते हिंसा न भावित अवतरी, जिनके न लेश मृषा न जल मृण हूँ बिना दी योग है, अठ दस सहस विद शील धर चिद ब्रह्म ने नित रम। देखो टेप रखा है सामने, इसलिए सब बिल्कुल साइलेंटली जो है, क्योंकि मैं परिचित हूँ सबसे, हैं बहुत साइलेंटली। छुलक जी आएंगे वो दर्शन कर लें। अच्छा, बंद ही कर दो। मुनियों के 28 मूल गुण कहे गए हैं। 28 मूल गुणों का पालन करते हुए मुनि महाराज कोशिश ये करते हैं कि उनके अंतरंग में राग द्वेष परिणाम कम हो। मुख्य विषय यही है। वे 28 मूल गुण कौन कौन से हैं? 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक और 5 इंद्रिय विजय और 7 शेष गुण। 6 ढालाकार ने 3 गुप्तियों को भी मुनि महाराज के लिए मूल गुणों में शामिल किया है, पर वे 28 मूल गुण के अंतर्गत नहीं आती हैं। वे उनके उत्तर गुण हैं। उत्तर गुण वे कहलाते हैं जैसे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और मेन सब्जेक्ट होता है। तो मेन सब्जेक्ट तो मूल गुण है जो उन्हें रोज पालन करना
आवश्यक रूप से पालन करना
आवश्यक रूप से पालन। मूल उत्तर गुण वे हैं जो मूल गुणों की सुरक्षा के लिए पालन करना आवश्यक होते हैं।
बट दे आर ऑप्शनल।
तो 5 महाव्रतों में पहले कह रहे हैं अहिंसा महाव्रत। अहिंसा महाव्रत 2 प्रकार से पालन होता है। एक बाह्य में हम जीवों के घात से बच जाते हैं, वो द्रव्य हिंसा है, उससे हम बच गए। और अंतरंग में जो हमारे विकारी भाव हैं, काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि हैं, वे हमारे अगर नहीं होते हैं तो हम भाव हिंसा से बच गए। इस तरह से मुनि महाराज दोनों भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा दोनों का त्याग कर देते हैं। इसी तरह बाह्य में झूठ वचन नहीं बोलना और अंतरंग में झूठ बात का विचार नहीं करना। ऐसा ही हम सत्य धर्म के बारे में लेंगे, ऐसे ही अचौरी के बारे में, ऐसे ही ब्रह्मचर्य के बारे में, अंतरंग भी और बहिरंग भी। बाह्य में स्त्री मात्र का त्याग कर दिया, अंतरंग में स्त्री के प्रति राग भाव का त्याग कर दिया। बाह्य में समस्त 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया, अंतरंग में उस 10 परिग्रह के प्रति जो मूर्छा भाव है उसका भी त्याग कर दिया। इस तरह द्रव्य और भाव दोनों तरह से वर्णन ये करेंगे। तो कह रहे हैं 6 प्रकार के जीव हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 प्रकार के काय तो ये हैं, और एक त्रस काय अर्थात 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक। तो ये 6 जीव निकाय कहलाते हैं। हाँ, एक स्थावर के 5 भेद और एक त्रस काय। वास्तव में तो स्थावर त्रस, अब स्थावर 5 प्रकार के हैं, तो 5 वो और एक त्रस को शामिल करके 6 जीव निकाय ये कह दिया। षट काय जीव, 6 प्रकार के जीवों को जो नहीं मारते हैं, उनके प्राणों की विराधना नहीं करते हैं, इसलिए उनके सब प्रकार की द्रव्य हिंसा का भी त्याग है और भीतर में जो रागादि भाव हैं उन्हें भी नहीं करते हैं, इसलिए उनके भाव हिंसा भी नहीं है। और जिनके लेश मात्र भी झूठ वचन का उपयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा फर्क किया है, जल और मिट्टी जो कि सार्वजनिक है उसे छोड़ करके अन्य किसी की भी स्वामित्व वाली चीज को जो ग्रहण नहीं करते बिना दिए, इसलिए उनके अचौरी है। यहाँ पर उन्होंने जल और मिट्टी को भी ले लिया। क्यों ले लिया पंडित जी साहब ने, ये नहीं समझना है, क्योंकि जल और मिट्टी जो सार्वजनिक है उसे लेने का निषेध नहीं है, बिना पूछे भी ली जा सकती है, पर इन्होंने उसको भी शामिल कर दिया है बारीकी से कि वो भी नहीं लेते हैं। तो यहाँ लगता है कि जल और मिट्टी जो जिसने जिसका कोई स्वामी है ऐसी जल मिट्टी भी नहीं लेंगे, क्योंकि किसी के घर में पानी भरा रखा हुआ है, किसी के घर में मिट्टी पड़ी है, वो नहीं लेंगे, बिना दिए नहीं लेंगे, इसलिए उनके अचौरी व्रत है। और 18,000 प्रकार के शील के भेद होते हैं, अर्थात सब प्रकार से वे ब्रह्मचर्य का या शील का पालन करते हैं और चित ब्रह्म में नित रम रहे। बाह्य में तो किस चीज को छोड़ा है, स्त्री मात्र को, तो शील व्रत हो गया, और अंतरंग में ब्रह्म के जैसी चर्या करना, ये ब्रह्मचर्य हो गया। इसलिए दोनों बातें एक साथ दे दी गई हैं कि अंतरंग में अपने ब्रह्म में अर्थात आत्मा में लीन रहते हैं और बाह्य में स्त्री मात्र का या कि कुशील इत्यादि का सबका त्याग कर दिया, इसलिए उनके ब्रह्मचर्य।
महाराज जी, ये जो भाव हिंसा या जो भाव में आते हैं तो उसपे अपना बहुत ज्यादा
कंट्रोल नहीं रहता। हाँ। पर हमने अपनी इच्छा पूर्वक तो त्याग कर ही दिया,
इच्छा पूर्वक तो कर दिया, पर अपने आप
जो अपने आप आ रहे हैं भाव
कर्मों के वजह से,
जो संस्कार बस जो भाव आते हैं वो तो क्षणिक हैं। मैं अपनी तरफ से तो प्रयास
नहीं कर रहा हूँ, बस
इतना ही है। तो वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने अंतरंग के विकारों को भी जीतने का प्रयास शुरू कर दिया है। वे पूरी तरह जीत लेंगे तो फिर वे मुनि थोड़ी कहलाएंगे, वे तो अनंत भगवान हो जाएंगे। देखिएगा,
प्रयत्न, हाँ प्रयत्न कर दिया है।
हाँ, बाहर में तो हिंसा का त्याग कर दिया, अंतरंग में रागादि विकारों को जीतना शुरू कर दिया, इसलिए उनके भाव हिंसा भी से भी बच गए।
साधारण ग्रस्त के जैसे भाव आते रहते हैं तो वैसे मणि महाराज के लिए
आते नहीं रहते, क्यों नहीं आते? अंतर मुहूर्त के लिए कषाय का उदय आ जावे तो बहुत सारे प्रकार के विचार
आते
हैं, वो शांत कर लेते हैं, उन विचारों को हटा देते हैं, चाहे वो राग द्वेष के विचार हो, काम क्रोध के विचार हो, किसी प्रकार के चारों कषाय पड़ी हुई है तो चारों कषाय में से कोई भी कषाय आ जाएगी। और फिर उसके बाद कहते अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दस धाते टले परमाद तज चौकर मही लक समित ईरियाते चले जग सुखित कर सब अहित कर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत चरण। पहली वाली लाइन के द्वारा पांचवें महाव्रत का वर्णन कर दिया कि अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग दस धाते टले। यहाँ संग का अर्थ है परिग्रह, तो दस प्रकार का जो बाह्य परिग्रह क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान दासी और दास कुक और भांड, ये जो दस प्रकार का बाह्य परिग्रह है वो भी उन्होंने छोड़ दिया है। और अंतरंग में चौदह प्रकार का जो सभी प्रकार के परिग्रह से वे रहित हो चुके हैं। बाह्य में वस्तु का त्याग, अंतरंग में उस वस्तु के प्रति होने वाली मूर्छा का त्याग, यही अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग की विवक्षा यहाँ पर है। इसके बाद पांच समितियां हैं। सबसे पहले ईरिया समिति, समिति अर्थात सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना। मोक्ष मार्ग में निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों चलती है। निवृत्ति अर्थात उस कार्य से, अशुभ कार्य से पूर्णतः विमुख हो जाना, और अब बोल शुभ कार्य करना है तो सावधानी पूर्वक करना। मैं अशुभ तो बोलूंगा नहीं, शुभ बोलूंगा तो भी टू द पॉइंट बोलूंगा, हित मित और प्रिय ही बोलूंगा। इस तरह प्रवृत्ति को भी सावधानी पूर्वक करने का नाम समिति है। अब प्रवृत्ति पांच प्रकार से ही होती है, चलने फिरने रूप प्रवृत्ति होती है, बोलने रूप प्रवृत्ति होती है, सामान को उठाने रखने रूप होती है, आहार ग्रहण करने रूप होती है, और मल मूत्र का विसर्जन करने रूप होती है। मुख्य रूप से पांच ही प्रकार की प्रवृत्ति होती है दिन भर में। उसी प्रवृत्ति को सावधानी पूर्वक करने के लिए निर्देश दिया, वही समिति कहलाने लगेगी। सम्यक इति अर्थात सावधानी पूर्वक की जाने वाली क्रिया का नाम समिति कहलाता है। अब ईरिया समिति, चलने की जो क्रिया है उसको सावधानी पूर्वक करना, कैसे? प्रमाद छोड़ करके, अर्थात अहितकारी प्रवृत्ति नहीं करेंगे। प्रमाद, प्रमाद में अहित ही होता है, इसलिए प्रमाद छोड़ करके अर्थात सावधान होकर के, चौकर अर्थात चार हाथ आगे, मही अर्थात पृथ्वी, लखी मतलब देखकर, चार हाथ आगे जमीन देख करके सावधानी पूर्वक अर्थात जीवों की रक्षा करते हुए आना जाना, यही रिया समिति कहलाती। दिन के प्रकाश में ये भी ध्यान में रखेंगे, देख करके मतलब दिन के प्रकाश में,
मतलब वो देखते रहना चाहिए, इतना उजाला होना चाहिए कि वो चार हाथ जमीन
दिखाई, और जीवों की रक्षा का भाव रहना चाहिए। प्रमाद है जहाँ वहाँ तो
अलर्ट
रक्षा होगी, अलर्ट होना चाहिए। अलर्ट इस बात के लिए कि जीव ना मर जाए, मुझे कांटा ना लग जाए, मुझे कंकड़ ना चुभ जाए, ये अलर्टनेस अलग है, लेकिन मेरे द्वारा जीव ना मर जाए ये अलर्टनेस यहाँ
अहिंसा का।
हाँ, और अब वचन बोलना है तो जग सुहित कर, जिससे कि जीवों का हित हो वो वचन बोलना। सब अहित हर, दूसरे का अहित ना हो। हित तो हो रहा है, सावधानी ये भी रखना पड़ेगी कि अहित ना हो जाए। श्रुति सुखद, ऐसे वचन बोलना जो सुनने पे भी ठीक मालूम पड़े, कर्कश ना हो, मधुर हो, और किसी को संशय में ना डाले, सब संशय हरे, किसी को कंफ्यूज करने वाले वचन नहीं कहे, उसे अपना आशय स्पष्ट रूप से कहे।
एम्बिग्युटी नहीं होना चाहिए,
जिससे कोई भ्रम पैदा हो जाए। देखिए अलग लिखे, भ्रम रोग हर, भ्रम भी एक प्रकार का रोग है। वास्तविकता को हम नहीं परिचित कराते हैं व्यक्ति से और उसे एक भ्रम में डाले रहते हैं, तो वो तो भ्रम उसके लिए स्वस्थ नहीं होने देगा कभी, कि क्या पता कैसा है। तो कहते हैं कि भ्रम ही है रोग, उस रोग को हरण करने वाले, उसे भ्रम में नहीं डालते, बल्कि वो जो उसको बहुत सारे भ्रम है उन भ्रमों को भी हटा देने वाले जिनके वचन है। और ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कि मुख रूपी चंद्रमा से उनके मानो अमृत ही झर रहा हो, जैसे कि चंद्रमा से कहते हैं अमृत झरता है। इस तरह हित मित और प्रिय ये सारी बातें इसमें आ गई। तो हित मृत प्रिय वचन बोलना ही ये भाषा समिति कहलाती है। फिर कहते हैं 46 दोष बिना सुकुल शावक तने घर असन को ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोष ते तज रसन को सुचि ज्ञान संयम उपकरण लख के गहे लख के धरें निर्जन तुथान विलोक दन मल मूत्र श्लेष्म परिहरें। अब एशना समिति वो कहलाती है कि भोजन के समय मैं सावधानी रखूं, निर्दोष आहार ग्रहण करूं। निर्दोष आहार किसके यहाँ ग्रहण करना है? जो निर्दोष शावक है। तो दोनों बातें आ गई। 46 दोष बिना, 46 प्रकार के दोष हो सकते हैं साधु के आहार के समय, कुछ गृहस्थ के द्वारा, अच्छा। कुछ साधु के द्वारा,
अच्छा।
हाँ, उत्पादन, उद्गम, एशना, इस प्रकार के ये दोष 46 दोष होते हैं बनाते समय या आहार ग्रहण करते समय। और अंतराय भी जो है 32 होते हैं। तो 46 दोष और 32 प्रकार के अंतराय को दूर करके,
32 अंतराय,
32 प्रकार से अंतराय हो सकता है।
अच्छा, पर हाँ,
जनरल लोगों को नहीं मालूम, हाँ। वो हम लोगों को ध्यान रहते हैं कि 32 प्रकार से हो सकता है। अब मान लीजिए किसी घर में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी कुंडी लगी हुई है, वे कुंडी खोल के गए हैं तो अंतराय,
अच्छा अंतराय हो जाता
है। जैसे कि वो एक कमरा है उसमें आहार करवा रहे हैं और उसमें सीढ़ी लगा करके ऊपर और कोई सामान रखा हुआ है तो उस समय सीढ़ी पर से चढ़ करके सामान लेके आ रहे हैं तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, वो अंतराय माना जाए। जैसे सील बंद कोई सामान रखा था उसको हमारे सामने खोल करके फिर दे रहे हैं तो वो अंतराय माना जाएगा। अब ये नेचुरली होते नहीं है, देखने में आते नहीं, चले जा रहे हैं, मान लीजिए इतने नीचे से निकलना पड़ा कि हमारा सिर जो है वो नाभि से नीचे झुकाना पड़ा, तो कहते ये भी अंतराय है। या कि खड़े हो रहे हैं उस समय जो है हाथ अंजलि छूट करके और जंघाओं से टकरा गई तो वो भी अंतराय है। खड़े
हैं हमारा जी अंजलि अगर नहीं छोड़ी है और अगर वैसे झुक के जाना है तो अंतराय
तब भी माना जाएगा।
फिर अच्छा, फिर वो आहार
नहीं लेंगे, वो अंतराय हो गया, उतने नीचे झुकना पड़ा, अंजलि छूट ही जाएगी। तो पैरों के नीचे आहार खड़े कर रहे हैं और दोनों पैरों के बीच से चूहा,
वो तो ठीक है, वो तो आहार करते समय की बात है। आहार
आहार जाते समय भी, आहार जाते समय कोई मृत इत्यादि देह दिख गई तो अंतराय माना जाएगा। इस तरह से 32 अंतराय होते हैं, आहार के जाते समय भी, रास्ते में भी, और वहां पहुंचने पर, शुरू होने पर भी, इस तरह 32। और दोष तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया में जो दोष होते हैं वे दोष कहलाते हैं, जिसमें एक दोष ये भी है कि पहले स्तुति करना और बाद में स्तुति करना, ये बहुत अच्छा दाता है, ऐसी पहले भी स्तुति करके भोजन नहीं लेना, मन ही मन ऐसा विचार नहीं करना कितने अच्छे दाता हैं ये, मुझे कितने अच्छा ढंग से भोजन देते हैं, ये भी एक दोष।
मुनि के मन के अंदर,
मन के अंदर आना नहीं आया, या कि बाद में उसकी स्तुति कर दी वचन के,
बहुत अच्छा खिलाया,
बहुत अच्छा खिलाया, ये भी दोष। तो ऐसे जो है बहुत प्रकार के, वो ध्यान में तो रहते हैं पर सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम रहता। तो 46 दोष बिना और सुकुल, अर्थात जिसका उत्तम कुल, उत्तम कुल कौन सा है? जिसमें व्यसन नहीं, सीधी सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा और व्यसन से मुक्त है, वो कुल सुकुल है। ऐसे श्रावक के यहाँ पर भोजन को ग्रहण करें, निर्दोष भोजन ग्रहण करना ही एशना समिति है। सावधानी पूर्वक ग्रहण करेंगे, आशक्ति पूर्वक ग्रहण नहीं करेंगे, ये एशना समिति है। और काहे के लिए करते हैं
जी, जैसे सुकुल का आपने कहा, जैसे कोई ब्राह्मण सपोज वो जैन धर्म पाल लेता है और आप
सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है और सप्त व्यसन का,
तो फिर उसकी जन्म से उसका कोई संबंध,
फिर कोई संबंध, मुख्य यही है। और भोजन क्यों ग्रहण कर रहे हैं? तप की बढ़ाने के लिए, ले तप बढ़ावन हेतु, उसका हेतु क्या है? तप बढ़ाने, शरीर के पोषण करने के लिए नहीं है, इसलिए वे विभिन्न रसों को त्याग करके ही आहार ग्रहण करते हैं, ये उनकी एशना समिति है। सूचि ज्ञान संयम उपकरण, उनके पास तीन प्रकार के उपकरण हैं। एक तो शुद्धि के लिए कमंडलू है, ज्ञान प्राप्ति के लिए
शास्त्र
है, और संयम के पालन करने के लिए पीछी है। इस तरह तीनों उपकरणों के लिए, या कि कोई महाराज को पढ़ने में दिक्कत होती तो चश्मा है तो वो भी उपकरण माना जाएगा, यही उपकरण है जो कि एक साधु के रखने योग्य है। कोई और चीजें उपकरण नहीं कहलाएंगी कि मेरा उपकार कर रही है तो उपकरण कहलाएंगे, नहीं, जो उनके ग्रहण करने योग्य जो उपकारी वस्तुएं हैं वे उपकरण है। तो उन उपकरणों को रखेंगे या कि ग्रहण करेंगे, लकी के गहें लकी के धरें, लकी के अर्थात देखभाल करके शोधन करके जीव राशि का घात न हो इस विधि से ग्रहण करेंगे और इसी विधि से देखभाल करके रखेंगे। ये कहलाती आदान निक्षेपण समिति चौथे नंबर। और निर्जंतु थान अर्थात जंतु से रहित स्थान को अवलोकन करके अपने शरीर के मल मूत्र कफ इत्यादि को परिहरण अर्थात परित्याग करते हैं, ये प्रतिष्ठापन समिति कहलाती है। इन सब चीजों में सावधानी ही समिति कहलाती है। अब जो मैंने कहा था कि तीन गुप्तियों को भी उन्होंने शामिल किया है, तो वही यहाँ पर कहते हैं, सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तिन सुतुर मुद्रा देख मृगगण उपल खाद खुजावते रस रूप गंध तथा परश अरुशब्द शुभ असुहावने तिन मेन राग विरोध पंचेन्द्री जयन पद पावने। मन समीचीन प्रकार से मन वचन काय का निरोध करना अर्थात उनकी अशुभ प्रवृत्ति का निरोध करना, अशुभ प्रवृत्ति मन की वचन की और शरीर की इन तीनों की छोड़ देना। तो कहते हैं अशुभ प्रवृत्ति मन की छोड़ने के लिए क्या करना, आत्मा का ध्यान करना। आत्मा का ध्यान करने से मन में अशुभ विचार नहीं आएंगे, या कि जैसा भगवान ने विचार करने को कहा वैसा मन में विचार करना, वाणी सूत्र वचन बोलना, आगम के वचन बोलना जिससे कि वचन गुप्ति हो जाएगी, या फिर मौन रह जाना या आगम के वचन बोलना। और शरीर शरीर को कायोत्सर्ग इत्यादि में स्थिर करना ये भी है, और या फिर जो है शरीर के द्वारा शुभ क्रियाएं करना, यही काय गुप्ति है। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि मन वचन काय तीनों का निरोध कर देते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। जब वे आत्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं तब उनकी वो स्थिर मुद्रा देख करके उसे काष्ठ समझ करके जो जीव जंतु हैं हिरण इत्यादि सुथिर मृगगण हिरण इत्यादि भी आकर के उपल अर्थात पत्थर जान करके या कि ठूंठ जान करके उससे अपनी खुजली को माने रगड़ लेते हैं। इस तरह से वो इतने अधिक
निश्चल
मन वचन काय सबको उन्होंने इतना निश्चल और इतना निर्विकार कर दिया है कि उनकी ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है, उसका वर्णन कर दिया। और पांच इंद्री के विषय कौन से हैं, शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, तो रस है, रूप है, गंध है, परस अर्थात स्पर्श है, और शब्द जो है श्रोत्र इंद्री का विषय है, ये शुभ भी होते हैं और असुहावने भी होते हैं। उनमें शुभ में राग नहीं करना, अशुभ में द्वेष नहीं करना, इस प्रकार वे हमेशा तत्पर रहते हैं, यही उनके पांच इंद्री के विषयों पर विजय प्राप्त हो गई। तो इसको पंच इंद्री निरोध नाम के पांच मूल गुण हो गए, पांच महाव्रत हो गए, पांच समिति हो गई और पांच इंद्री विजय हो गई। तीन गुप्तियां एडिशनल हैं, ये अभी मूल गुण में तो 15 ही हुए हैं, ऑप्शनल हैं, 15 हो गए अच्छे आवश्यक, और 7 से उसमें बचे वो अपन बाद में कर लेंगे।